بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات و سلام ہو خداوند متعال کی بہترین مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر، اور بالخصوص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے انصار اور اعزہ و اقارب پر۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ جن میں نواس رسول الثقلین، فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہلم منانے کے لیے دنیا بھر سے لوگ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ کربلا میں 40 کے دن یعنی چہلم کے دن موجود ہو کر امام حسین علیہ السلام کا پرسہ جناب سیدہ اور امام علی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کو پیش کر سکیں۔ جی ہاں، ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی زائرین کربلا کے راستے میں ہیں اور کربلا پہنچنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو یہ بخیر و عافیت واپس آ جائیں، لوٹ جائیں، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جی ہاں ناظرین، ایک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان کوئی کام انجام دیتا ہے اور وہ کام برا ہوتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ اما ہمیں شیطان نے بہکا دیا ہے، شیطان تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال شیطان ہر انسان کو بہکا رہا ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایک وسیلہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے دور ہو سکیں، شیطان ہم سے دور ہو سکے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے شیطان کے اندر ہم سے زیادہ طاقت ہے، اب ہم اس کو اپنے سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جناب امیر حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خدا کے ذریعے سے شیطان انسان سے دور ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ کوئی بھی ذکر کرتے رہیے، اللہ کے بہت سے اذکار ہیں، انہیں اذکار میں سے سب سے بڑا ذکر، سب سے بہتر ذکر قرآن مجید ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام بہتر سے بہتر کر سکیں اور شیطان آپ کے نزدیک نہ رہے، آپ سے دور چلا جائے، تو لہٰذا آپ کو قرآن مجید کو بہتر سے بہتر اپنی زندگی میں راہ عمل بنانا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت بہتر سے بہتر کی جا سکتی ہے، تاکہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی اس میں مزہ آئے اور سننے والا بھی محظوظ ہو سکے۔ جی ہاں، تو آج کا درس بھی ہم شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں استاد جنت حسین شاہ صاحب۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پروگرام میں خوش آمدید اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔
مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ چلم کی مناسبت سے بھی اپنے تمام ناظرین اور عاشقان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تسلیت بھی پیش کرتا ہوں۔
استاد بہت شکریہ۔ اور ناظرین، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آج احکام نون ساکن کے بارے میں، کہ نون ساکن کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تنوین کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اچھے خاصی گفتگو کریں گے۔ استاد آپ کے لیے بیان کریں گے کہ یہ تنوین کیا ہے اور کہاں اس کا کیا حکم ہے، کس جگہ پر اس کے ماقبل کون سا حرف آ جائے یا اس کے بعد کوئی حرف آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ بہرحال ہم اس پر مفصل گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، تو آئیے درس کو شروع کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ احکام نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں۔ استاد، سب سے پہلا سوال آپ سے تنوین اور نون ساکن کے بارے میں ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے کہ ان کے احکام کیا ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ قرآن کے حوالے سے کچھ بیان کیا جا سکے اور اپنے ناظرین کی خدمت میں قرآن حوالے سے جو کچھ پروردگار نے ہمیں توفیق دی ہے اس حوالے سے خدمت کی جا سکے۔ دیکھیں، احکام نون ساکن یا تنوین جب کہا جاتا ہے تو نون ساکن اور تنوین چونکہ ایک ہی چیز ہے، تنوین کو جب کھولا جائے تو وہ ایک نون ساکن بن جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں احکام نون ساکن یا تنوین، ان کا کوئی حکم جدا نہیں ہے، نون ساکن جدا نہیں ہے
بلکہ ایک ہی چیز ہے،
جدا چیز نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ مثلا با دو پیش ہوں تو بن ہوتا ہے، اگر ایک پیش ہو بعد میں نون لے آئے جی تو وہ بھی بن بن جاتا ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے احکام کے حوالے سے چار قسم کے حکم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اظہار، ایک ہوتا ہے ادغام، ایک ہوتا ہے اقلاب، اور ایک ہوتا ہے اخفا۔ میں ان چار میں سے ایک ایک کے حوالے سے میں کچھ بیان کروں گا، اگر وقت رہا تو سب کے حوالے سے بحث ہوگی، اگر نہیں تو آئندہ اس کے حوالے سے بحث کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، جو چار حکم ہیں ان میں سب سے جو پہلا حکم جس کے حوالے سے میں कुछ बयान करना चाहूँगा, वो होता है इजहार। इजहार क्या चीज़ होती है, क्या मतलब है उसका? इजहार कहते हैं यानी जाहिर हो जाना, किसी चीज़ का जाहिर होना। अब नून साकिन या तनवीन का जब हम कहते हैं हुक्म है कि जाहिर हो जाए, तो इससे मुराद ये है कि नून साकिन या तनवीन जिस तरीके से हम उर्दू में तलफ़ुज़ करते हैं वही तलफ़ुज़ वो इजहार कर रहे हैं। उसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे वो इजहार होता है जो हम उर्दू तरीके से जैसे हम पढ़ते हैं, वो इजहार कुछ जगहों पे होता है। किन जगहों पे होता है वो चीज़ बयान के काबिल है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी, छह हरूफ हैं जिन्हें हरूफ हलकी कहा जाता है, हमज़ा, हा जो गोल हा होती है, या दो चश्मली हा भी कहते हैं उसको, आइन, हा, गाइन, खा, एक हा बगैर नुक्ते वाली, एक खा नुक्ते वाली, ये छह हरूफ हैं। अगर नून साकिन तनवीन के बाद इन छह हरूफ में से कोई एक आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि छह के छह हरूफ हों, नून साकिन तनवीन के बाद अगर इन हरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता है, वहाँ पे नून साकिन तनवीन को ऐसे तलफ़ुज़ करेंगे जैसे हम उर्दू ज़बान में तलफ़ुज़ करते हैं। जैसे मसलन कलमा इस्तेमाल हुआ कुरान में, मसलन मिन इलाहिन, मिन इला, मिन इलाहिन। ये यहाँ पे देखिए
यानी
जो
नून
कायदा
साकिन
और
के बाद
कानून
फिर
नहीं,
हमजा है।
कायदा और कानून जो लोग नहीं जानते वो भी इसी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसे नहीं पढ़ना है। चूंकि मिन इला नून साकिन के बाद जब हमजा आ गया है, तो वहां पे नून को हम उर्दू तरीके से पढ़ेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, मिन इलाहिन, या मिन हाद, नून के बाद गोल हा आ गई, या मिन हादिन। तो यहाँ पे भी नून साकिन के बाद चूंकि हा आई है, हा एक ऐसे हरूफ में से है कि जिसे हरूफ हल्की कहते हैं, तो यहाँ पे भी नून साकिन को जाहिर करके पढ़ा जाएगा।
जी
या मसलन तनवीन, मसलन समीउन अलीम, समीउन, आइन के ऊपर तनवीन आ गई है, उसके बाद आइन आ रहा है, तनवीन के बाद आइन आ गया। हमने बयान किया है कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई आ जाए, अब आइन हरूफ
जी
हल्की में से, आइन जो पहले वाला समीउन, आइन पे जो तनवीन है उसको वाजे और जाहिर करके पढ़ेंगे, समीउन अलीम। जैसे हम ये कायदा ना
यानी
जानते
गोया
हुए तो
नून साकिन जो है उसका तलफ़ुज़ अलग होगा और आयन का तलफ़ुज़ वहां से अलग होगा,
जी, देखिए
यही
यहाँ पे मुराद ये है कि इसको कोई
जी
खास सीखने की जरूरत नहीं है। मैं
सही
आसान इसलिए बयान कर रहा हूँ ऐसे कि जैसे हम उर्दू जबान में तलफ़ुज़
मसलन
करते हैं, या
दिल
कायदा जानने
जी
से पहले जब हम तलफ़ुज़ करते थे
जी
उसमें
सही
कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बगैर किसी तब्दीली के समीउन अलीम।
जी
जब हमें पता नहीं था कि यहाँ पे नून साकिन या तनवीन आ गई उसके बाद हरूफ हल्की आ जाए उसका तलफ़ुज़ कैसे होता है, ऐसे ही हम तलफ़ुज़ करते थे, समीउन अलीम
अली
या मिन इला। लेकिन ये जानना जरूरी है कि नून साकिन तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आते हैं तो वहां पे हम इस तरीके से तलफ़ुज़ कर सकते हैं,
जी
अगर हरूफ हल्की के अलावा कोई हर्फ है तो उसका अपना खास एक कानून और कायदा है और उसका खास तलफ़ुज़ होता है। अब देखिए ये जो इजहार हम कह रहे हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई आ जाता है वहां पे इजहार होगा, यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए ख़ास एक चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। वो ये है कि जब हमारे जहन में ये चीज़ आ जाती है नून साकिन तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आ गए तो वहाँ पे नून साकिन तनवीन को जाहिर करके पढ़ेंगे, अब उसके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है?
जी
बाज़ दफ़ा हमारे जहन में ये चीज़ होती है लेकिन उसके बावजूद हम गलत पढ़ देते हैं, समीउन अलीम जब जैसे हमने कहा, या मिन इला कहा, या मिन हाद कहा। यहाँ पे तीन चीज़ों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि नून साकिन या तनवीन को जब हम जाहिर कर रहे हैं, मतलब समीउन कह रहे हैं या मिन इला कह रहे हैं, मिन इला, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ जिसको अपने जहन में रखना है और ख्याल रखना है उसका, वो ये है कि कहीं नून पे हरकत ना आ जाए
जी
या इसको कल कलाम में तब्दील नहीं कर दे। जैसे बाज़ लोग पढ़ते हैं मिन मिन इला मिन हाद, ये गलत है। नून का तलफ़ जब हम कर रहे हैं वहां पे आवाज को वापस पलटाना नहीं है, मिन न ऐसे नहीं करना, या हरकत आ जाएगी या सिफत कलकला आ जाएगी, ये गलत हो जाता है। मिन इला नून को छोड़े बगैर
सही
फौरन बाद में हम बाद
जी
वाला जो हरूफ लिखे उस पर चले जाएंगे, एक चीज। दूसरा ये है कि जब बहुत सारे हमारे शिरकत करने वाले अफराद जब किरात करते हैं उनमें यह चीज देखी गई है कि यहाँ पे जब इजहार होता है वहां पे नून को खींच के पढ़ते हैं, मसलन मिन इला, ये गलत है। जब इजहार हो रहा है वहां पे खींचना नहीं है, वो एक
बिल्कुल
और कायदा होता है जहां पे खींचने के हवाले से बयान किया जाता है। यहाँ पे फौरन नून को छोड़ के बाद में मिन इलाहिन या समी उन आलिम, समी उन आलिम
आलिम
गलत है। एक और तीसरी चीज जो वो ये है कि बाज़ ऐसे होता है कि जब हम इजहार कर रहे हैं तो जो नून साकिन है, नून साकिन है, तनवीन है, उसके बाद हरूफ अल के इनके बीच में आवाज को काट देते हैं, ये गलत है। समी उन आलिम, समी उन आलिम, या मसलन मिन इला, नून उसमें इम्तदाद होनी चाहिए, मिन इला फौरन बाद पे चला जाना चाहिए, मिन इला, ये गलत है। वहां पे
यानी
आवाज
बीच में
को
आवाज कटनी नहीं
कटनी नहीं
चाहिए,
चाहिए,
वहीं से उसका इत्तसाल होना चाहिए पहले
जी
वाले
जी
हर्फ के
वहां पे
साथ।
इत्तेसाल हो जाना चाहिए। ये है उसके इजहार के हवाले से। उसके बाद जिस चीज को मैं ज्यादा जरूरी समझता हूँ वो है इदगाम, उसके हवाले से बयान किया जाए। देखिए इदगाम भी उनके जो चार कवायद हैं नून साकिन तनवीन के, उनमें से एक कायदा बहुत मुहिम है। इदगाम कहाँ पे होता है? नून साकिन तनवीन के बाद अगर छह हरूफ आ जाते हैं, यार मा लून या रामीम लाम वाव नून, इन छह हरों में से अगर कोई आर्फ आ जाता है नून साकिन तनवीन के बाद, वहां पे नून साकिन तनवीन का उस बाद वाले हरूफ में इदगाम कर देंगे।
जी
यहाँ पे हमारे उर्दू जबान वालों के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि हमारी सहूलत के लिए कुरान में वहां पे तशदीद लगा दी जाती है, वो जो हरूफ यार मालूम है उसके ऊपर
जी
तशदीद लगा दी जाती है और हमें पता होता है यहाँ पे इदगाम हुआ है। मसलन फमन यामल, फमन यामल है, बाद में यार मालून या आ गया यहाँ पे, फमई या अमल, यहाँ पे तशदीद है। छह हरूफ में से अगर कोई हर्फ आ जाता है तो वहां पे इदगाम होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो काबिल तवज्जो वो ये है कि इन छह हरूफ में से कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनमें गुन्ना होता है, कि जो इम्तदाद है जो अभी मैंने बयान किया था कि बाद हम मिन इलाहिन पढ़ते, इसको गुन्ना कहते हैं। यहाँ पे नाक से आवाज आनी चाहिए। देखिए इन छह हरूफ में से चार हरूफ या मीम वाव नून, इनमें गुन्ना है, रा और लाम में गुन्ना नहीं है। देखिए फमई, गुन्ना क्या होता है? नाक से आवाज का आना।
जी,
फमई या
यानी इदगाम के साथ साथ एक सीफत ये
एक
गुन्ने की
तीस,
भी उनके
जी,
दरमियान
दूसरी ये
मौजूद है।
चीज
जी
याद रखने वाली है, वो इतनी कुछ जरूरी नहीं है याद रखने के लिए, चूंकि उस पे खुद
जी
कायदा वहां पे जब जारी हो रहा है वहां पे तशदीद लगा दी
सही,
जाती
बिल्कुल
है। लेकिन ये चीज याद रखने वाली है कि जब या मीम वाव नून ये चार हरूफ आ गए नून साकिन तनवीन के बाद, वहां पे गुन्ना हो रहा है। फमई मई, देखिए अगर नाक पकड़ देते हैं तो वो आवाज बंद हो जाती है, इसको गुन्ना कहते हैं। गुन्ना यानी नाक से आवाज का आना। लेकिन ये चीज लाम और रा में नहीं है,
जी
जैसे मेर रब्बिहिम, अभी अगर नाक को पकड़ के इस रा का तलफ़ुज़ करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए
यानी
मेर
वहां
मेर
पर
रब्बिहिम,
हल्की सी आवाज भी नून की नहीं आएगी,
जी,
बल्कि खुद
चूंकि
रा की
इदगाम
आवाज
हो
वहां पे
गया है
या लाम की
रा,
आवाज
जी
होगी।
जी
जी
इदगाम हो गया है रा में, वहां पे रा की आवाज
जी
आएगी। मेर रब्बिहिम या मिल लदुन का, मिल लदुन का, अगर नाक को पकड़ के भी पढ़ते मिल लदुन का, देखो मिल्ला, देखिए उसमें कोई
जी
फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
सही,
फमई या मल, इसको अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे नुक्ता मैं बयान कर दूँ, टाइम है
जी, बयान
जी,
कीजिए।
एक चीज जो बहुत मुहिम है, जो हमारे नाजरीन हैं बिलखसूस जिन लोगों ने काम किया है वो खास तवज्जो करें, कि बाज दफा एक कानून से चीज खारिज हो जाती है, कानून से खारिज हो जाती है, वो भी किसी शराइत के साथ। देखिए जब हमने ये कहा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यार मालून आ जाए, वहां पे क्या होगा? इदगाम होगा। बाज दफा इदगाम नहीं होता, क्यों इदगाम नहीं होता ये चीज याद रखने वाली है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद जो हरूफ यार मालून आ रहे हैं, यार मालून में से कोई हर्फ आ रहा है, ये अगर एक कलमे में है तो वहां पे कायदा जारी नहीं होगा,
जी सही,
वहां पे इसका इदगाम नहीं होगा। नून साकिन तनवीन के बाद में जो हरूफ यार मालून, उसमें इदगाम नहीं होगा। एक कलमे में अगर आ जाए, जुदा जुदा कलमे में है, जैसे मिन लादुन का, मिन जुदा है, लादुन का
जी
वहां पे जुदा था, इसलिए यहाँ पे कायदा जारी हुआ है। लेकिन अगर एक कलमे में आ जाते हैं, मसलन फिर दुनिया, दुनिया यहाँ पे नून उसके बाद या आ रही है, या यार मलून में से है, नून साकिन भी है, कायदा जारी होना चाहिए था। लेकिन चूंकि नून और या एक कलमे में आए हैं, वहां पे ये कायदा जारी नहीं होगा। ये चार कलमे पूरे
यानी
कुरान में,
शर्त। जी
जी, इस तरह के कलमात हैं जहां पे ये कायदा जारी नहीं होगा। एक दुनिया है, एक सिनवान है, एक कैनवान है और एक बुनियान है,
जी
दुनिया बुनियान सेनवान कैनवान, ये चार हरूफ
जी
हैं। चूंकि कायदा
जी
जो हमारा हमने कहा नून साकिन और तनवीन के बाद जो यरमलून आ रहे हैं एक
तो
कलमे
वहाँ
में,
पर वो जी
वहां
वहाँ पर
पे कायदा
ज़रूरी है।
जारी।
बहुत शुक्रिया
ओके
उस्ताद जी। नाज़रीन तो आइए एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, यानी तिलावत कलाम मजीद समाप्त करते हैं। जी नाज़रीन तो आइए अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, दूसरा सेटमेंट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप ही में से कई एक अफराद यहाँ पर तिलावत करते हैं और उस्ताद फिर उनको बताते हैं कि इस लफ्ज़ को बेहतर किस तरह से मसलन पढ़ा जा सकता था। तो आइए आज के हमारे जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट हैं वो अली शाहबाज साहब हिंदुस्तान से हैं। सलामुन अलैकुम। अली शाहबाज
हेलो,
साहब,
सलाम
अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कैसा मिजाज है?
आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा।
जी आवाज़ बहरहाल शायद कम जा रही हो, लेकिन चलिए बहरहाल
मैं
आप
तिलावत
तिलावत
करूं?
जी तिलावत फरमाए सूरह आल इमरान आयत नंबर 30 से 39 तक। बिस्मिल्लाह।
जी। الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وما تجد كل نفس ما عملت خير مقدرا ما عملت من سوء أن بينها وبين أمدا بعيدا ويحزن ربهم والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون
अली शाहबाज साहब, माजत चाहते हैं कि आपकी आवाज़ यहाँ पर बाद में कट कट कराने लगी थी, यानी साफ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए बहरहाल आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो आइए दूसरे पार्टिसिपेंट जनाब इम्तियाज साहब कश्मीर से हमारे साथ में हैं। सलामुन अलैकुम। जी कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र है। आपकी उम्र क्या है? जी आपकी एज कितनी है? इम्तियाज साहब आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी चलिए बहरहाल हम तो आपकी आवाज सुन ही पा रहे हैं। तिलावत फरमाएं सूरह बकरा आयत नंबर 216 से 220 तक। बिस्मिल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الدنيا والآخرة، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لعنتكم، إن الله عزيز حكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
كشمير سے امتیاز حسین صاحب ہمارے ساتھ میں ٹیلیفون لائن پر تلاوت کلام مجید یہاں سنا رہے تھے، اور ہمارے ناظرین اور استاد نے اس کو سنا ہے، تو آئیے پوچھتے ہیں استاد سے کہ استاد نے ان کی تلاوت کو کتنا پسند کیا ہے. جی استاد،
ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کر رہے تھے، بہت اچھے طریقے سے اور ٹھہر ٹھہر کی تلاوت کر رہے تھے، اور واقعی حق بھی یہی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس پہ جو کہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، جتنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں اتنی توجہ زیادہ رہتی ہے، غلطیاں کم ہوتی ہیں.
جی.
اور ایک اور چیز کے حوالے سے میں ان کو داد دیتا ہوں، جو قاری حضرات ہوتے ہیں بہت کم قرآن میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا نفس کے حوالے سے सांस के हवाले से इनमें देखा था कि दो दो लाइनें जो है वो उन्होंने एक ही सांस में पढ़ ली हैं, और इनके अंदर इतना वो था कि वो कंट्रोल कर सकते थे
जी
अपने सांस और
बिल्कुल
नफस को। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इस पे मज़ीद प्रैक्टिस करें तो ये एक कारी कुरान के लिए ज़रूरी चीज़ है,
जी,
और जब वो तिलावत करता है उसके लिए एक इम्तियाज़। और
खुद ये जो तिलावत कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, इनका लहन भी वाकई
जी
बहुत
जी
अच्छा
वही
महसूस हो
चूँकि
रहा था।
ठहर ठहर के पढ़
जी
रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। एक तो इनका नाम भी इम्तियाज़ है,
जी
और इस हवाले से इम्तियाज़ात भी इनमें बहुत सारे हैं। खुदा इनको जज़ाए खैर दे,
इलाही
और
आमीन।
इनके वालदेन को भी इस चीज़ की जज़ा दे। एक दो चीज़ों की तरफ मैं इशारा करूँगा कि जिस पे अगर वो तवज्जो फरमाएंगे इनकी तलावत बेहतर हो सकती है, वो ये है कि जो अभी मैंने अर्ज़ किया था, बस ऐसे हरूफ होते हैं कि जिनकी वो सिफत नहीं होती, खाम खा हम एक सिफत उसमें लेके आ
लेके
जाते
आए
हैं, वो है सिफत कलकला। बहुत सारे हरूफ में इन्होंने जहाँ पे भी कोई एक हर्फ साकिन था, बहुत सारे ऐसी जगहों पे उन्होंने उस हर्फ में कलकला किया है, यानी जब उसका तलफ़ुज़ किया है उसको फ़ौरन छोड़ देते थे, रिहा कर देते, ये सही नहीं है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, आयत नंबर 217 में लंबी आयत है, यसअलूनक अनिश शहरिल हराम क़िताल फी कुल क़िताल फीह कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाह। आगे देखिए वकुफरुम भी, यहाँ पे उन्होंने पढ़ा है वकुफ कुफरुम, यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है। जब फास साकिन है इसमें सिफत कलकला नहीं पाई
जी
जाती है, यहाँ पे जब हम तलफ़ुज़ कर रहे हैं ये साकिन है, इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि फ़ौरन हमने हरफ़े बादी पे जाना है। वकुफरुम भी वकुफरुम भी, यहाँ पे अगर पढ़ेंगे वकुफ वकुफरुम भी, या इसके बाद वाले वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही, यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से पढ़ा है, व इख छोड़ना नहीं है, क्या है
जी
व इखराजु अहली व इखराजु अहली, यहाँ पे अगर छोड़ देंगे तो एक सिफत कलकल आ जाती है। और भी कुछ जगहों पे इन्होंने ऐसे पढ़ा, इस पे तवज्जो फरमाए, जहाँ पे कुछ हर्फ साकिन होता है, हर हर्फ में कलकला नहीं है, बल्कि कुछ खास हरूफ है जिनमें
जी
सिफत कलकला पाई जाती है। एक चीज़ जो आज हमारे मौजू के साथ भी मुताबिकत रखती थी, वो ये है कि आयत नंबर 220 के एंड पे जब इन्होंने पढ़ा है इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, यहाँ पे मैंने जो अर्ज़ की थी कि उस चीज़ पे खास तवज्जो करें, वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे हम बाज़ दफ़ा दबा के रखते हैं उसके बाद छोड़ते हैं, मसलन अजीज़ुन हकीम, ये चीज़ गलत है, चूँकि यहाँ पे इजहार हो रहा है इसमें
जी
तवज्जो करें,
बिल्कुल
जब इजहार हो रहा है तो उसमें फ़ौरन अजीज़ुन हकीम फ़ौरन
जी,
छोड़ के बाद वाले हर्फ पे जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया उस्ताद, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये इदगाम और इजहार की बहस नून साकिन और तनवीन में जो है बहुत ही अच्छा बयान फरमाया, शुक्रिया। नाज़रीन, वाकन हम शुक्रगुजार हैं आप तमाम हजरात के, और बिलखसूस हमारे जो पार्टिसिपेंट थे यानी इम्तियाज़ हुसैन साहब, और इसी तरह पहले पार्टिसिपेंट अली शहबाज साहब, अगरचे हम उनकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाए हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें हिंदुस्तान से ज्वाइन किया है। और नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।